चौथा स्कंध 24वां अध्याय शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 38 अथ त्वं असि ब्रह्मन् परम आत्मन् विपश्चिता विश्वं रुद्रभय भस्तं अकुतश्चित् भया गतिः। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन्
विपश्चितां
विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् अकुतश्चित् भया गतिः। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् अकुतश्चित् भया गतिः। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् अकुतश्चित् भया गतिः।
अथ त्वमसि नो ब्रह्मन्
परमात्मन् विपश्चितां
विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् अकुतश्चित् भया गतिः।
विद्वान मनुष्यों के लिए विश्वम
सारा ब्रह्मांड
रुद्र से भयभीत
ध्वस्तम
संहार किया हुआ अकुतश्चित भया
निश्चित रूप से निर्भर
भय शून्य
गति
गंतव्य
गंतव्य
आश्रय
आश्रय
अनुवाद और तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद हे भगवन जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं वे सभी आपको परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं तात्पर्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए तीन महाधीश हैं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव महेश्वर प्रलय के समय यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है विराट शरीर तथा जीव का लघु शरीर दोनों ही चरम अंत में विनाशशील हैं किंतु भक्तों को शरीर विनाश का कोई भय नहीं रहता क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास होता है कि विनाश के बाद वे अपने घर अर्थात भगवान के धाम वापस जाएंगे त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन यदि कोई दृढ़ता पूर्वक भक्ति योग का अनुसरण करता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता क्योंकि उसका भगवान के धाम वापस जाना पूर्व निश्चित है अभक्त ही मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्हें इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वे कहां जाएंगे या अगले जन्म में उन्हें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा इस श्लोक का रुद्र भय शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि रुद्र अर्थात शिवजी ही रुद्र भय की बात कर रहे हैं इसका अर्थ यह हुआ कि रुद्र भी कई हैं इनकी संख्या 11 हैं और ये रुद्र शिव जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं अन्य रुद्रों से भिन्न हैं यद्यपि ये भी उन्हीं के समान शक्तिमान हैं निष्कर्ष यह निकला कि एक रुद्र दूसरे रुद्र से भयभीत रहता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक इस दृश्य जगत के संहार में लगा रहता है किंतु भक्त की दृष्टि में तो प्रत्येक व्यक्ति रुद्र से डरता है यहाँ तक कि स्वयं रुद्र भी भक्त कभी भी रुद्र से नहीं डरता क्योंकि भगवान के चरण कमलों की शरण में रहने से वह सदैव सुरक्षित रहता है जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्तः प्रणश्यति हे अर्जुन तुम यह स्पष्ट घोषणा कर सकते हो कि मेरा भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी भी दशा में विनष्ट नहीं होता अनुवाद दोहराइए हे भगवान
हे भगवान
जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं
जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं
वे सभी आपको परब्रह्म
एवं परमात्मा
के रूप में जानते हैं यद्यपि सारा ब्रह्मांड
भगवान रुद्र से
भयभीत रहता है
क्योंकि
वे अंततः प्रत्येक वस्तु को
नष्ट करने वाले हैं
किंतु विद्वान भक्तों के लिए
आप निर्भय आश्रय हैं
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि दो प्रकार के लोग सुखी होते हैं। आप जानते हैं वो कौन से दो प्रकार के लोग हैं भागवतम के अनुसार?
एक परम मुक्त और एक परम बद्ध।
परम बद्ध ही नहीं, जो अति मूर्ख है और जो आत्म साक्षात्कारी है, ये दोनों सुखी है। बाकी बीच में हम सब सब दुखी। परम मूर्ख क्यों सुखी है? क्या वो सुखी है? नहीं, उसे लगता है कि मैं सुखी हूँ परंतु वो सुखी नहीं है, क्योंकि इतना मूर्ख है कि वो समझता नहीं कि मैं कितना दुखी हूँ। एक व्यक्ति ने, एक दार्शनिक ने कहा है कि इससे कोई बड़ा बंधन नहीं है कि जिसमें बद्ध व्यक्ति सोचता है कि मैं मुक्त हूं। आप समझ रहे? इतना सख्त या बड़ा बंधन नहीं है जिसमें कि बद्ध व्यक्ति सोचता है कि मैं मुक्त हो। समझे कि नहीं समझे? और एक बार बोलो। इतना बड़ा बंधन नहीं है कि जिसमें बद्ध व्यक्ति सोचता है कि मैं मुक्त हूं। कोई उदाहरण? जैसे समझ लो कि जेल में कोई व्यक्ति है, हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो अंदर जेल में भरा है, दरवाजे में ताला है और अकेला ऐसे बैठा है अंदर, और वो सोच रहा हो कि मैं तो मुक्त हूँ। कितना बड़ा मूर्ख होगा वो। तो है वो बद्ध, परंतु माया, भगवान की माया शक्ति इतनी चतुर है और इतनी प्रबल है कि सारे जीवों को बद्ध अवस्था में रखती है और अपने प्रभाव के कारण, माया के प्रभाव के कारण वो ऐसे उनके मन में विचार उत्पन्न कराती हैं कि मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो आजकल सब लोग हर प्रकार की स्वतंत्रता चाहते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता, सब लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि राजनैतिक स्वतंत्रता यही सही स्वतंत्रता है, कोई सोचता है आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्रता यही है स्वतंत्रता। तो इस तरह से तरह तरह के स्वतंत्रता की बात लोग करते हैं, परंतु वो नहीं समझते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता अर्थात तीन गुणों से मुक्त होना, ये सत्व रजस तमस से मुक्त होना, ये भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होना, यही वास्तविक मुक्ति है। हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो अपने स्वरूप में स्थित होना कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, इस भावना में और इन कार्यों में स्थित होना, यही मुक्ति है। तो कोई भौतिक जगत में रहते हुए भी यदि अपने आप को कृष्ण का दास मानकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सतत रहता है तो वो मुक्त पुरुष कहलाता है। भले वो भौतिक जगत में क्यों ना हो, भले उसका भौतिक शरीर क्यों ना हो। तो ये कौन सा श्लोक है, कोई बता सकते हैं? बहुत अच्छा। यहाँ यस्य हरेर्दास्य, यह मतलब इस जगत में यस्य, जो व्यक्ति हरेर्दास्य, जो हरि का दास है। यहाँ यस्य हरेर्दास्य कर्मणा, अपने कर्मों से, मनसा अपने विचारों में, गिरा अपने वाणी से क्या करता है, निखिलाश निखिलाश अप्य अवस्थासु, हर अवस्था में पूरी तरह से क्या करता है,
शरणागत
होता है। निखिलाश अप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने काया से, मन से, वाचा से भगवान हरि की सेवा में लगा रहता है, वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त कहलाता है। ये वास्तविक स्वतंत्रता है। परंतु जो व्यक्ति केवल अपने आप को मूर्खतावश स्वतंत्र समझता है और अपने बंधन को भी नहीं जानता, उसका बंधन सबसे खतरनाक बंधन है। जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ इलाज करते हैं हमारे बीमारी को समझ के। परंतु यदि कोई व्यक्ति मैं बीमार हूँ ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है ना। हमारे डॉक्टर बैठे हैं बीच में, खास करके मानसिक रोग के जो मरीज होते हैं, आप उनको बोलने जाए चलो डॉक्टर के पास जाते, मैं पागल हूँ क्या, आप ही पागल। इसलिए सबसे कठिन जो मरीज होता है, जो मानसिक रोग का मरीज होता है, सही है ना, क्योंकि वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ। उसे लगता है दूसरे लोग बीमार हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सार्वभौम प्रभु की वो का वो चुटकुला याद आता है, वो हमेशा चुटकुले सुनाते हैं ना, कि एक बार एक राजा वो अपने राज्य में इधर उधर परीक्षण कर रहा था कि सब लोग ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं अपनी अपनी सेवा। तो एक बार वो जेल में गए देखने के लिए कि हमारे पुलिस विभाग जो है वो गुनहगारों का देखभाल ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, जेल में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो जब अंदर गए तो जो गुनहगार थे उन्होंने सोचा ये नया गुनहगार आ गया, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अरे आपने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया आपने। तो राजा ने बोला अरे ये जेल में नहीं, सॉरी पागलखाने में गया था, पागलखाने में वो देखने गया था कि कौन है, कैसे चल रहा है यहाँ पे। तो वहाँ जब अंदर गया तो सबने कहा आपको क्या हो गया, क्या बीमारी है आपकी। मैं बीमार नहीं, मैं राजा हूँ। तो उन्होंने कहा हम लोग जब यहाँ आए थे ना हम भी ऐसे ही कहा करते थे। तो जो पागल है वो दूसरों को पागल समझता है, मैं सही हूँ सोचता है। तो जब व्यक्ति अपने रोग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है, वो औषध भी दवाई भी नहीं लेगा तो कैसे वो ठीक हो सकता है। उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है कि मैं बद्ध हूँ, मैं दुखी हूँ, वो अपने समस्या का समाधान कैसे कर पाएगा, उपाय नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ जब भय की बात आती है, क्योंकि ये भय का विषय यहाँ पर है, हर एक व्यक्ति भयभीत है, है कि नहीं? सभी लोग भयभीत हैं, कोई ऐसे मुक्त नहीं है। इसलिए हम इतना ही बोल सकते हैं कि केवल जो मूर्ख है और जो परम कृष्ण भक्त हैं भय से मुक्त होते हैं, बाकी सब भय भय के ग्रस्त होते हैं। कभी कभी ऐसे योद्धा क्षत्रिय वर्ग भी होते हैं जो अपनी निर्भयता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। शिवाजी तो है कि नहीं? इधर गोरखा, गोरखा लोग है, मिलिट्री में है ना गोरखा लोग, तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो लोग?
डरते नहीं
है, एक छोटे है, छोटे होते, इतने लंबे चौड़े ऐसे नहीं होते, छोटे होते हैं, लेकिन इतने निर्भय होते हैं। ऐसे बताए जाते कि बंदूक के गोने में वो चाकू रहता, वो लेके सीधे जाते हैं, गोली लेते हैं हाथ में, लेते हैं चलते हैं। तो उनके बारे में एक कहावत है कि यदि कोई कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझ में भय नहीं है, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। ऐसे एक सेनापति ने कहा था, मानेकशॉ नाम के थे, उन्होंने ऐसे कहा। तो कभी कभी थोड़े लोग ऐसे भयभीत रहते, लेकिन उनको भी भय आएगा, कभी न कभी तो आएगा। पूरी तरह से निर्भय व्यक्ति नहीं रह सकता ये संसार में। जब तक हम बद्ध अवस्था में है तब तक भय रहेगा ही रहेगा। श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है कि भय का मूल कारण क्या है? कोई श्लोक जानते हैं? बोलो। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशानपेतस्य विपर्ययो स्मृति। भयम्, ये जो भय उत्पन्न कब होता है? द्वितीय अभिविनेशतः स्यात्। द्वितीय मतलब भगवान से द्वितीय, भगवान से अलग अर्थात माया में, भगवान से भिन्न किसी भी वस्तु में हमारा मन मग्न हो गया। अभिविनेशतः मतलब मग्न हो जाना। तो हम जब भगवान से अतिरिक्त किसी अन्य विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में मग्न हो जाते हैं तो भय उत्पन्न होता है। भयम् द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशाद् अपेतस्य, मतलब ईश भगवान के अतिरिक्त अन्य द्वितीय विषय में। विपर्ययः, हम जब भगवान को पीठ दिखाते हैं, उल्टा हो जाते हैं, भगवान के सामने नहीं आते, अस्मृति ही, तो हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। तम अभजताम माया, तो अभजताम कोई देख सकते हैं ये इसमें है क्या श्लोक? देखो, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, भयम भयम से देखो, 11वें स्कंद का श्लोक है वो, पूरा श्लोक पढ़ो, नव योगेंद्र के द्वारा है।
भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्य देशादपित्यस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययातो
बुध आभजेतम्। तम माययातो बुध आभजेतम्, इसलिए बुध जो बुद्धिमान लोग होते हैं, आभजेत, वो भजन करते हैं भगवान का। तम माय, फिर आगे,
भक्ते कैशम गुरुदेवता,
भक्ते कैशम गुरुदेवतात्मा, तो पूरे एकात्म चित्त से वो भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से ये भय का कारण ये होता है, क्योंकि हम भगवान से भिन्न हो जाते हैं। अभी भगवान के होते हुए यहाँ गलत काम क्यों होते हैं? कोई पूछते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न है कि संसार में ये सब गलत काम, ये दुष्टपन, ये सब क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? मतलब भगवान क्या स्वयं क्रूर हैं या भगवान असमर्थ हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए? तो ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं?
अज्ञान।
अज्ञान, सही। अज्ञान अर्थात अंधकार। ये उदाहरण, ये दृष्टांत पहले भी आप सुन चुके होंगे अवश्य। सूर्य के होते हुए भी अंधकार हो सकता है क्या? अधिरस प्रभु ने बोला नहीं हो सकता, किसी ने बोला, ब्रजेंद्र प्रभु ने बोला हाँ हो सकता है। तो कौन सही है?
दोनों सही है।
हो सकता है, सूर्य 12 बजे सूर्य है इतना तेज है, फिर कैसे बादल ढक लेते? ठीक है सर, बादल भी नहीं खुला, हाँ तो फिर सूरज के पूरे होते हुए भी यदि जब हम सूरज के सामने रहते हैं तो उजाला उजाला प्रकाश सब जगह दिखता है, परंतु जब सूरज को पीठ दिखाते हैं तो क्या होता है? सामने क्या दिखता है? हमारी परछाई दिखती है, छाया। वो अंधकार है कि नहीं है? तो सूरज को के होते हुए, बादलों के न होते हुए अंधकार है। क्यों? क्योंकि हमने सूरज को पीठ दिखाया। तो सूरज के होते हुए भी दिन के समय अंधकार हो सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के होते हुए भी दुष्टपन हो सकता है। क्यों? जब व्यक्ति भगवान को पीठ दिखाता है, विपर्ययः अस्मृति, फिर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए व्यक्ति भयभीत ज्यादा हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है वो डरता नहीं है, केवल माया से डरता है कि मैं कभी माया में न पड़ूं, ये डर होता है, परंतु बाकी डर नहीं रहता। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है संसार में, है ना? तो कोई मरना नहीं चाहता है, तो मृत्यु से भी नहीं डरता है शुद्ध भक्त। तो कौन से हमारे वैष्णव भजन में बताया गया है कि कृष्ण भक्त निडर होता है? बहुत अच्छा, भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मन, तुम कृष्ण के चरणारविंद का भजन करो जिससे कि तुम निर्भय हो जाओगे। निर्भय होने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। अवश्य हमारी सुरक्षा के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं और करना चाहिए। निर्भय होने के लिए हमें मूर्ख नहीं होना चाहिए। यदि कोई कहेगा मैं कृष्ण का भक्त हूँ और वो शहर में रहता है और रात को अपना दरवाज़ा घर का खुला छोड़ के सो जाता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ये मूर्खता है ना? तो अपनी रक्षा करने के लिए भी हमें थोड़ी बहुत जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। रात को दरवाज़ा बंद करना चाहिए, अंदर से कड़ी लगानी चाहिए, ये सब अपनी जो सुरक्षा है वो हमें करनी चाहिए। परंतु अंततः कृष्ण भक्त जानता है कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। यदि श्रद्धा बहुत तीव्र हो जाती है तो फिर व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तो निर्भयता और श्रद्धा एक ही है। जिसकी जितनी अटूट और प्रबल श्रद्धा है वो उतनी ही हद तक निर्भय रहेगा। जिसकी श्रद्धा कोमल है वो भयभीत हो जाएगा, डावाडोल हो जाएगा जल्दी से। तो इसलिए कृष्ण भक्त निडर। आपको कृष्ण भक्तों की निडरता पे, निर्भयता पे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सब कितने सारे हैं, हनुमान जी कौन सा उदाहरण, हाँ वो डरे नहीं और जब सामने आए अपने आप को गिरफ्तार भी करवा लिया उन्होंने, इंद्रजीत मेघनाथ ने वैसे पराजित नहीं किया हनुमान को, परंतु स्वयं हनुमान जी तैयार हो गए, चलो मुझे रावण को देखना ही है, कौन ये रावण, चलो ठीक है। और भागवत में कौन से प्रहलाद किस प्रकार से निर्भय थे प्रहलाद, क्या उसका उदाहरण है,
साहब अपने हिरण्यकश्यप ने उनको पूछा कि क्या सीखा, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की उनके साथ,
भगवान की स्तुति की, और ये तो ठीक है स्तुति करना एक बात है, लेकिन जब और आगे क्या खतरा आया, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार डालने के लिए कितना प्रयास किया, क्या क्या किया, जहरीले सांपों के गड्ढे में डाल दिया ताकि जहरीले कोबरा सांप ये सब डसते उनको, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। दूसरा हाँ एक उन्मत्त हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया ताकि हाथी उसको कुचल दे। तीसरा
पहाड़
से ऊपर से गिरा दिया, कहाँ हुआ ये, कहाँ पे लीला हुई, अहोबिलम सिंहाचलम। और क्या किया हिरण्यकश्यप ने, अग्नि में डाल दिया इसलिए होली का लीला हुई। और क्या किया सैनिकों ने, उनके अस्त्र लेकर शस्त्र लेकर आक्रमण किया, तो इस तरह से, और फिर जलते हुए तेल में भी डाल दिया, ऐसे बहुत सी चीजें कर ली, परंतु प्रहलाद का एक बाल भी बका नहीं, बाल बका नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रहलाद डरे नहीं। प्रहलाद क्या कर रहे थे, हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण कर रहे थे, इसलिए ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो श्लोक है जिसमें कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति की नवविधा भक्ति नौ अंगों के लिए एक एक भक्त जो है वो बहुत आदर्श उदाहरण है। श्रवणम के लिए परीक्षित महाराज, कीर्तनम के लिए सुखदेव महाराज, स्मरणम के लिए प्रहलाद महाराज। तो जब संकट आया तो इधर उधर हाय हाय करके चिल्लाए नहीं, वकील कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, पुलिस कहाँ है, नहीं सीधा भगवान का स्मरण करने लगे, क्योंकि वो सतत करते थे और कष्ट के समय भी स्मरण करने लगे, इसलिए वो निर्भय हुए। और जब भगवान भी प्रकट हुए खंभे से नरसिंहदेव के रूप में, इतना भयानक दृश्य था और मूर्तिमान कोप, कोप अर्थात गुस्सा क्रोध, मूर्तिमान क्रोध थे वो, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप और उसकी सेना का वध करने के बाद जब राज सिंहासन पर बैठे भगवान, तो शिव जी ब्रह्मा जी आदि भी उनके सामने आने के लिए घबरा रहे थे, परंतु प्रहलाद बिल्कुल नहीं घबराए, वो सीधे भगवान के सामने गए। इससे ये हम समझ पाते हैं कि उनका प्रेम उनकी श्रद्धा कितनी तीव्र थी। तो श्रीमद् भागवतम में ये एक उदाहरण है कि कैसे प्रेम और श्रद्धा से व्यक्ति निर्भय हो सकता है। दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण भागवतम में ध्रुव महाराज, ठीक है वो जंगल में गए लेकिन अभी तक भक्त नहीं बने थे। सबसे प्रसिद्ध अम्बरीश महाराज, जब दुर्वासा मुनि ने अपने बाल उखाड़ के जमीन पे डाल दिया, उससे राक्षस उत्पन्न किया और वो राक्षस आ रहा था प्रहार करने के लिए, मारने के लिए अम्बरीश महाराज को, अम्बरीश महाराज न वहां से भागे न उन्होंने अपना कोई तलवार वगैरह उठाया, प्रहलाद महाराज की तरह वो भी हाथ जोड़ के भगवान का स्मरण करके खड़े रहे। तो उनको चिंता नहीं थी अपनी, परंतु भगवान को चिंता थी कि मेरे भक्त को हानि पहुंचाने जा रहे हैं ये दुर्वासा मुनि, तो भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप निकल गया भगवान की उंगली से, और सुदर्शन चक्र में जाके उस राक्षस का वध भस्म कर दिया तुरंत, और फिर वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करता गया, और दुर्वासा मुनि सारे ब्रह्मांड में भागे, यहाँ तक कि वैकुंठ के द्वार तक भी पहुंचे, और अंततः भगवान नारायण ने भी कहा मैं भी मदद नहीं कर सकता हूँ, आपको अम्बरीश महाराज के पास ही जाना होगा क्षमा याचना करने के लिए, तब ही मेरा सुदर्शन चक्र जो है वो आपका पीछा छोड़ेगा, ये मेरे हाथ के भी बाहर है। और उस समय भी अम्बरीश महाराज को घमंड नहीं हुआ कि अरे देखो भगवान स्वयं मेरे लिए आए, प्रहलाद को भी घमंड नहीं हुआ, भगवान नरसिंह देव मेरी रक्षा के लिए वहां से आए, नम्र बने रहे। और जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आए क्षमा याचना करने के लिए, तो अम्बरीश महाराज को लज्जा हुई, अरे रे रे मुनिवर आप क्या कर रहे हैं, आप इतने बड़े ब्राह्मण हैं साधु हैं और मैं एक गृहस्थ हूँ क्षत्रिय हूँ राजा हूँ, आप मेरे पास आके दंडवत प्रणाम करते हैं क्षमा याचना करते हैं, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता, आपको मत कीजिए, मैं ही अपराधी हूँ। तो ये होते हैं वैष्णव। तो हरिदास ठाकुर का उदाहरण भी है, हालांकि भागवत में नहीं है, चैतन्य चरितामृत में है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे भगवान के भक्तों के हृदय में तीव्रता से भक्ति श्रद्धा प्रेम होता है, वहाँ पे व्यक्ति निर्भय हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत विचित्र बात बताई गई है, ये प्रचेताओं को सुना रहे हैं गीत, भगवान की स्तुति है ये गीत। कौन सुना रहे हैं? शिव जी सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? प्रचेताओं को सुना रहे हैं। तो यहाँ शिव जी अर्थात रुद्र, तो यहाँ रुद्र भय की बात हो रही है। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है क्योंकि वो अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। तो रुद्र भय की बात करते हैं, रुद्र भय क्यों होना चाहिए? रुद्र अर्थात शिव, तो रुद्र की सेवा क्या होती है? पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करना है ना, तो संहार करने वाला जो भी आता है उससे तो हम लोग डरते ही है ना, कोई नष्ट करने वाला आता है जिसको बहुत शक्तिशाली हो जिसका हम सामना नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से तो हम डरेंगे ही। तो चाहे जो भी कितना बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो विनाश से घबराता है, अपने शरीर का विनाश ब्रह्मांड का विनाश। तो अब रुद्र ही रुद्र भय की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में क्या कहा आपने ध्यान से सुना होगा, तो क्या कहा?
कई सारे रुद्र हैं,
कई रुद्र हैं, कितने?
ग्यारह,
एकादश रुद्र हैं, और वो आपस में एक दूसरे से भी डरते हैं, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी। और इन रुद्रों का काम क्या है? उनकी सेवा है ये भगवान के लिए, नष्ट करना। तो ये 11 रुद्र मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड का विध्वंस करते हैं, विनाश कर देते हैं, एक दूसरे से भी डरते हैं। बहुत अद्भुत बात बताई यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कि रुद्र भी भयभीत हो जाते हैं दूसरे से, परंतु ये रुद्र कहाँ से आते हैं? शंभु से आते हैं, शिव तत्व शंभु। तो यहाँ पे अंत में किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। तो रुद्र कहते हैं भले हम एक दूसरे से डरते हो और सारा ब्रह्मांड हम सबसे डरता हो, परंतु जो आपके आश्रय को स्वीकार करता है वो निर्भय हो जाता है। और हर एक व्यक्ति निर्भयता चाहता है ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निर्भय नहीं होना चाहता है, लेकिन भय तो आ ही जाता है संसार में। तो इसलिए बहुत सुंदर बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये सिद्धांत क्या है, शुद्ध भक्ति करने से, भगवान की रक्षा में, भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से हम निर्भय हो जाएंगे। अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थित ही। ये जब ज्ञान के लक्षण भगवद गीता में भगवान बताते हैं, तो ये अभयम कि निर्भय होना चाहिए। खास करके ये सन्यासी के लिए बताया गया, भगवद गीता का जो श्लोक है वो ना, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही। क्योंकि सन्यासी क्या करते थे, जंगल में से जाते थे, घूमते थे, भ्रमण करते रहते थे, तो वो डरेगा, जानवर आएगा, ये आएगा, वो तो कैसे करेगा, वो नहीं कर पाएगा। उसको श्रद्धा होनी चाहिए कि जानवर हो जो भी हो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, उसको जाना चाहिए बिंदास। तो अभी हमारे गोकुल धाम के पास जंगल में से आते जाते, आप सब जंगल में रह ही रहे हो, इसलिए ये श्रद्धा तो है आप सबको है, नहीं तो रह नहीं सकते थे आप यहाँ पे। मुझे याद है एक भक्त यहाँ पे आए थे रहने के लिए आश्रम में बहुत साल पहले, वो बस में आए, उधर से आते आते शायद रास्ते में कहीं भालू देखा हो, अस्वल अस्वल मंत्र ना, अभी साधारण तो भालू इधर आते नहीं है, वो एक बार आ गया और भाग्य से वही समय में आया जब ये लड़का जा रहा था, वो बस में से जा रहा था, वही समय आया। बाकी तो बेचारे भालू घबरा के यहाँ पर नहीं आते हैं, अंदर रहते हैं वो। कितने बार आए होंगे यहाँ पर, बहुत कम ना, याद है किसी को, आए हैं यहाँ पर गिरिजा में
एक बार आए थे,
एक बार। अच्छा
फनस
खाने के लिए आते हैं, तो बहुत कम आते हैं, लेकिन उस लड़के के दैव भाग्य वही समय आ गया वो, तो वो इतना घबरा गया कि ये बस इधर से आता है, यहाँ से चिखले जाके वापस जाता है ना, चिखले से फिर लौट के जाता है, तो उधर ही खड़ा रहा, रिटर्न बस लेके चला गया यहाँ से। एक दूसरे मंदिर में हम जब प्रवचन दे रहा था मैं, तो गोकुल धाम की बात आई, तो गोकुल धाम के बारे में थोड़े भक्त लोग पूछ रहे थे, कह रहे थे वहाँ इतना खतरा है, हम नहीं आना चाहते हैं क्योंकि जंगली जानवर है और ये है वो है, बहुत कुछ कह रहे थे। तो हमने कहा पता है, आप जहाँ शहर में रहते हो आपके वहाँ खतरे यहाँ से ज़्यादा हैं। सड़क में जा रहा व्यक्ति एक्सीडेंट धड़ाक से कोई उसको उड़ा देता है, मर जाता है बेचारा, कितने खतरे हैं, कितने सारे अपघात होते हैं आपको मालूम है। सड़क पे जो गाड़ियों के अपघात होते हैं उसमें भारत में कितने लोग मारे जाते हैं रोज प्रतिदिन, कोई अंदाज बोलिए। 16 419 या 420 या ऐसे कुछ प्रतिदिन गाड़ियों के अपघात में मर जाते हैं इतने लोग, और जो मरते नहीं है परंतु घायल हो जाते हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, वो तो अलग है सब, कितना आर्थिक नुकसान होता है वो भी अलग है, तो कितना खतरा है, और तरह तरह की बीमारियां ये वो सब आसानी से फैल जाते हैं। और दैव से हुआ ये कि जब मैं वहां इन भक्तों से बात कर रहा था, तो उसके थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, है भी मतलब वो सबसे एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में से था, वो कलकत्ता में, कलकत्ता जैसे बड़े शहर में। और वहाँ पे किसी एक मंजिल में आग हो गई बड़ी, और वो आग के कारण बहुत सारे लोग मर गए। तो आग में थोड़े जल के मर गए, और थोड़े लोग वहाँ से खिड़की से कूद पड़े, तो उतना ऊंचा था कि कूद के वो नीचे मर गए, वो नीचे कूद के। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, थोड़े तो बैठे बैठे अपने बिस्तर में ही जले गए, मरीज थे वो, डॉक्टर लोग नर्स लोग भी मर गए बहुत सारे। तो उन्हें बताया, देखो आपने पढ़ा होगा, ये 2-3 दिन पहले की खबर है, बड़े बड़े शहरों में कितने खतरे हैं, बैठे बैठे आदमी जल के मर जाता है। तो खतरे कहाँ पर ज़्यादा हैं, शहर में ज़्यादा है यहाँ गोकुलधाम में ज़्यादा है? खतरा केवल यही है बस। जोर जोर से बात करते वही एक खतरा है, बाकी खतरा नहीं है। कितने ऐसे चीजें हैं जहां लोग कुत्ते काटते हैं, पालतू कुत्ते। एक वृद्ध माता जी थी, उनका जो बेटा था, उस बेटे ने एक कुत्ते को पालतू रखा था घर में, वो माँ भी रहती थी उस घर में, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो एक बार वो लड़का अपने काम से गया था, ये कुत्ता था और ये उस लड़के की माँ थी। तो ये कुत्ते को क्या हो गया क्या मालूम, इसने इसको मार डाला, वो फाट डाला माँ को। और ऐसे कई घटनाएं पिछले 6-8 महीने में हुई हैं जो समाचार पत्रों में आ रहे हैं खबर। अपने घर में पालतू रखते हैं कुत्तों को, तो ये शहरी जीवन का सब ये है, खतरे हैं ये सब। कितने और खतरे हैं, तो जिसको वास्तव में सुरक्षित जीवन जीना है वो ऐसे आके जिएगा यहाँ पे? केवल घबरा घबरा रहे क्या होगा क्या होगा, ऐसे भी क्या होगा, जो भाग्य में है उतना ही होगा। जितना कष्ट हमको मिलना है वो तो मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लापरवाही करें, ऐसे नहीं कि हमें दुर्लक्ष केले पाहिजे, काळजी नाही घेतली पाहिजे, तसे नाही आहे। दुर्लक्ष पण नाही केलं पाहिजे हमें, परंतु घाबरून घाबरून राहायचं नाही। कौन सा एक सूत्र है, किसी को पता है कृष्ण भक्त को कैसे रहना चाहिए? माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास, है ना? बस रहायचं बिंदास, घाबरून घाबरून काय रहायचं? भगवंतावर श्रद्धा ठेवायची, काळजी घ्यायची, जो कदम है हमारी सुरक्षा के लिए वो हमें लेने चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मूर्खता नहीं करना चाहिए। परंतु ऐसे डर डर के नहीं रहना हमको, जंगल में जाएंगे जानवर आएंगे ठीक है, सब जगह सारा ब्रह्मांड जहां भी हम जाएंगे भय से मुक्त नहीं होंगे, खतरे सब जगह होंगे, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक पाताल लोक तक खतरे ही खतरे हैं इस भौतिक सृष्टि में। इसलिए भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, बस हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को?
प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण करते थे और निर्भय थे, ये समझते, लेकिन हाँ गोपियाँ भी निर्भय हैं और हमको पता है, लेकिन फिर भी वो लीला में जहाँ पे वो अरिष्टासुर आता है, फिर वो डर के फिर तमाल वृक्ष को पकड़ लेती हैं सब लोग, फिर उनको डर किस लिए है?
ये लीला है ना, और एक स्वाभाविक है, क्योंकि गांव में रहने वाले जब सामने से आएंगे तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे खुले रहेंगे, आओ शेर आएगा, हम तो कुछ कदम उठाएंगे ना कुछ करने के लिए। तो ये तरुणी गोपियां हैं, बच्चियां हैं, तो स्वाभाविक है कि जब ऐसे खतरनाक जानवर को देखते हैं तो थोड़ा कुछ हो जाता है। परंतु जब भगवान के साथ में रहते हैं तो बिल्कुल डर नहीं रहता। अब देखिए ग्वाल वाल सब रहते हैं, जब कृष्ण के साथ में रहते कोई उनको पता होता है अभी कोई डर नहीं, कृष्ण साथ में है। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता के जब कभी कभी जाता है ना, तो बड़े बच्चे उसको कभी सताते हैं, ऐसे होता है ना, कभी उसको चिढ़ाते हैं, कभी मारते हैं कुछ। बड़े बच्चे कभी छोटे बच्चों को ऐसे सताते हैं, कभी कभी होता है कि नहीं ऐसे। लेकिन वही बच्चा जब अपने पिता के साथ या माता के साथ जा रहा होता है हाथ पकड़ के, तब वो निर्भय होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि ये कोई बच्चा मेरे सामने नहीं आएगा, अभी मेरे पिता मेरे साथ में है। तो उसी प्रकार से जब भक्त को विश्वास होता है कि कृष्ण मेरे साथ में है, उसको कोई भय नहीं होता। एक भक्त ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हम लोग हमारे जीवन में कई बार तूफान आ जाते हैं। तूफान मतलब संकट, कष्ट आ जाता है ना सबके जीवन में, तो हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान देखो मेरे जीवन में कितना बड़ा तूफान आया, कितना बड़ा तूफान, ओहो कितना कष्ट हुआ मुझे, देखो देखो। हम सांत्वना चाहते हैं भगवान से। तो इसके बजाय वो भक्त कह रहे थे कि इसके बजाय कि हम भगवान के पास जाकर बताएं कि हमारा तूफान कितना बड़ा है, हमें तूफान को बोलना चाहिए, हे तूफान तुम देखो हमारे कृष्ण कितने बड़े हैं। फिर तूफान से भय नहीं होगा। ए तूफान तुम मेरे को डराओ मत, तुम्हारा जो काम करना है तुम कर लो, मेरे पास कृष्ण है, इसलिए कोई डर नहीं, तुम्हारा तूफान उफान का डर नहीं मुझे। हाँ, जब हमें साथ रहते कृष्ण है फिर ठीक, बस और कोई चिंता नहीं। कभी कभी क्या होता है, छोटा बच्चा ऊपर होता है, वो कूदना चाहता है, नीचे पिता खड़ा है, कूदो कूदो मैं पकड़ूंगा पकड़ूंगा, वो बच्चा घबराता है, कूदू नहीं कूदू, फिर पिताजी श्रद्धा रख के फिर कूद देता है, पिता पकड़ लेता है। श्रद्धा की बात है। एक कहानी मैंने बताई थी, शायद यहां भी बताई होगी मैंने, आपको याद है? वो आदमी पहाड़ चढ़ रहा था, फिसल गया, बताया आपको कहानी नहीं? तो एक आदमी पहाड़ चढ़ रहा था, ऐसे लोग पहाड़ चढ़ते हैं ना, और रस्सी वस्सी बांध के ऊपर चढ़ते हैं ना, एक खेल के रूप में चढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि वो चढ़ रहा था और रस्सी भी बांधी हुई थी, तो अचानक वो फिसल गया। तो फिसलने के बाद क्या हुआ कि वो नीचे 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 आता गया, परंतु रस्सी थी इसलिए रस्सी का अंत जब आ गया तो वो लटकता हुआ रह गया, लटक रहा था वो ऐसे ही रस्सी से। अब अंधकार हो गया था तो उसको पता नहीं चला कि मैं कहाँ कितना ऊंचा हूँ, क्या हूँ नहीं हूँ, केवल पहाड़ से वो लटक रहा है अभी। तो घबरा गया, तो उसने सोचा आपको क्या उपाय है, केवल भगवान को पुकार सकते हैं। तो उसने जोर से पुकारा, भगवान मेरी मदद कीजिए। तो फिर एक आकाशवाणी आई, हे पुत्र तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया हूँ। बोले आप कौन है? मैं भगवान हूँ, तुमने बुलाया ना मुझे तो मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं क्या करूँ? भगवान ने पूछा, मुझे बचाइए। तो बचना चाहते हो? ठीक है, तो मेरी बात माननी होगी। बोला हाँ करूँगा। तो बोलो हाथ छोड़ लो। उसने रस्सी को पकड़ा हुआ था, तो बोला हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ने से क्या होता, गिर जाता वो, लेकिन रस्सी को पकड़ के रखा था उसी से वो था ऐसे। तो उस समय एक चुटकुला ये है कि वो व्यक्ति कहते भाई और दो और कोई है क्या तो खैर फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब उसके दोस्त उसको ढूंढने गए तो उन्होंने देखा कि वो लटक रहा है जमीन के 2 फुट ऊपर समझ गए? यदि उसने रस्सी छोड़ दी होती 2 फुट गिर जाता नीचे, कुछ हानि नहीं पहुंचती उसको, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं थी। भगवान ने बोला हाथ छोड़ दो, अरे हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो क्या होगा मेरा, नहीं गिर जाऊंगा। तो हाथ छोड़ा नहीं उसने, और इसलिए रात को ठंडी में उसकी मृत्यु हो गई, बर्फ जैसे बन गया उसका शरीर, क्योंकि ऐसे ही था। श्रद्धा रखना चाहिए ठीक है, हाँ बस बिंदास ऐसे रहना चाहिए किसी से डरता नहीं, कोई डर नहीं, देखो सबके सामने आके बिंदास ऐसे रहना है कि नहीं, हाँ बस हाँ ऐसे ही बिंदास रहो आगे बस। हरे कृष्णा।
जब ऐसे प्रवचन वगैरह सुनते हैं रक्षसी इति विश्वासो अवश्य रक्षति कृष्ण, वो जब अपने खुद के जीवन में आता है तो
स्वाभाविक है, परंतु उस समय हमारे श्रवण किए हुए चीजों को याद करना चाहिए, इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत आवश्यक है। जितना हम श्रवण करेंगे उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, श्रवण कीर्तन जितना होगा उतनी श्रद्धा बढ़ेगी। और कोई प्रश्न? सब लोग निर्भय हैं, कोई प्रश्न नहीं और एक छोटी सी बात बताऊं, 4 प्रकार की निर्भयता है होती है, कौन से 4 प्रकार है? सात्विक, राजसिक, तामसिक और दिव्य। दिव्य निर्भयता वो है जो भगवान की श्रद्धा के ऊपर निर्भर, भगवत प्रेम, जैसे प्रहलाद, अम्बरीश महाराज, उनकी निर्भयता ये दिव्य है। सात्विक निर्भयता वो होती है जो कहता है मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, जो होगा सो होगा, मुझे कर्तव्य करना है मैं, और इससे बुरा परिणाम आएगा तो आएगा, देख लेंगे। जो राजसिक, ये ब्राह्मणों का ब्राह्मणों की निर्भयता होती है। रजोगुण की निर्भयता क्षत्रियों की निर्भयता होती है, युद्ध में जाते हैं निर्भय होके जाते हैं, जो होगा सो होगा, देखेंगे गोली खा लेंगे कर लेंगे, वो राजसिक निर्भयता है। तामसिक निर्भयता उसकी है जो शराब में मग्न रहते, वो मस्त रहता है ना, जो शराब पी के उन्मत्त हो चुका होता है तो वो भी निर्भय होता है, देखा है ना, वो भी भांडण करा ले तो दारी नहीं पिले असले तो भांडण करना नव्हतं, पण आता दारू पिले त्याला वाटतं की मी किती मोठा माणूस झालो, मी शक्तिशाली झालो, कोणाच्या समोर जाऊन भांडण करायला तयार होतोय, ते दारूचा प्रभाव आहे, ते तामसिक निर्भयता आहे। तो हमें किस तरह की निर्भयता चाहिए? दिव्य निर्भरता, भक्ति की निर्भरता, निर्भयता। क्या प्रश्न था?
जब भक्त लोग को भय होता है तो वो भय के कारण वो ज्यादा शरण लेते हैं भगवान का, तो वो कौन सा इसमें?
वो भी है, क्योंकि ये भौतिक जगत में रह के भय से मुक्त होना बहुत कठिन है। और जहाँ ब्रजवासी आदि रहते थे ब्रज में, रोज उनके यहाँ कोई ना कोई असुर वगैरह आते थे, तो अपने लिए तो भय था ही उनको, क्योंकि साधारण भोले भाले गांव के निवासी थे वो, तो इसलिए भगवान पे बहुत श्रद्धा थी। और खास करके उनका भय था कि कृष्ण को कहीं हानि ना पहुंचे। तो जब भगवान अपने भक्तों को ऐसे विकट परिस्थिति में डालते हैं, तो उनके भक्ति को तीव्र बनाने के लिए, ताकि वो भयभीत अवस्था में अन्य कोई आश्रय को न लेकर वो भगवान का आश्रय ही स्वीकार करते हैं, तो फिर उनकी भक्ति आगे बढ़ती है। और जो भी लेश मात्र कलमश उनके शरीर हृदय में होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। गोकुल धाम के निर्भय भक्तों की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।